बाइबल व्याख्यान दो की मैथ्यूसन कहानी इसराइल 2024 देव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। इस व्याख्यान में देव इब्राहिम की बुलाहट और पसंद से मोजेक वाचा और फिर डेविडिक वाचा की ओर बढ़ेंगे और इसराइल की कहानी विशेष रूप से पेंटाट्यूचल कथाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह उन आख्यानों के माध्यम से भूमि, वाचा, मंदिर, भगवान के लोगों और राजत्व के विषयों का पता लगाएगा। और अब डेव मैथ्यूसन। पिछले व्याख्यान में हमने कहानी की सेटिंग पर ध्यान दिया, जिसे मैं बाइबल की कहानी कहता हूँ, उत्पत्ति 1-3 की सेटिंग, जो सेटिंग और जटिलता दोनों का परिचय देती है, जहाँ भगवान मानवता का निर्माण करते हैं और आदम और हव्वा की रचना करते हैं। उसके लोग बनना। वह एक अनुबंधित रिश्ते में प्रवेश करता है और उन्हें एक दयालु उपहार आशीर्वाद का स्थान के रूप में भूमि देता है। भगवान की छवि के वाहक के रूप में उन्हें भगवान के उपशासकों के रूप में भगवान के राजत्व का प्रतिनिधित्व करना है। वे समस्त सृष्टि पर संप्रभु और अधिपति परमेश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें परमेश्वर के शासन और उसकी महिमा को सारी सृष्टि में फैलाना है और परमेश्वर उनके बीच में निवास करेगा। फिर भी पाप दृश्य में प्रवेश करता है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते का उल्लंघन किया। उन्हें आशीर्वाद के स्थान बगीचे से निर्वासित कर दिया गया है, ताकि उत्पत्ति के अध्याय 3 के अंत में, जिसे कहानी में प्रमुख ब्रेक के रूप में देखा जा सके, यह सवाल अभी भी उठता है कि क्या भगवान बस नहीं जा रहे हैं पूरी परियोजना को खत्म कर दें? ईश्वर सृजन के अपने मूल इरादे को कैसे पुनर्स्थापित करेगा? और हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहानी में अगली प्रमुख घटना को देखते हैं। वह थी ईश्वर का इब्राहिम को चुनना और बुलाना, जहां परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके साथ एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए चुना, ताकि इब्राहिम से एक संतान, लोगों का एक राष्ट्र उभरे, कि परमेश्वर उन्हें आशीष के स्थान के रूप में भूमि देगा, परमेश्वर उनके साथ एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करेगा। फिर उन्हें सारी सृष्टि पर परमेश्वर का शासन फैलाना था और पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण करते हुए फलदायी और बहुगुणित होने के परमेश्वर के आदेश को पूरा करना था। उन्हें उस आदेश को पूरा करना था ताकि इसराइल राष्ट्र उस इरादे को पूरा करने और उस कहानी को जारी रखने के लिए ईश्वर का साधन बन सके। तब हमने देखा कि मूसा के आगे के चयन और मूसा के साथ बनाई गई परमेश्वर की वाचा के साथ, विशेष रूप से मोजेक वाचा, वह साधन है जिसके द्वारा इसराइल राष्ट्र इब्राहिम के साथ बनाई गई वाचा में व्यक्त परमेश्वर के इरादे और सभी के लिए परमेश्वर के इरादे को पूरा करेगा। उत्पत्ति 1-2 से मानवता के लिए सृजन। तो फिर निर्गमन की पुस्तक परमेश्वर की पसंद मूसा से शुरू होती है, लेकिन इसराइल से भी शुरू होती है, विशेष रूप से अध्याय 1 में। और फिर मैं जो करना चाहता हूँ वह बस इसराइल की कहानी के माध्यम से आगे बढ़ना है, उत्पत्ति में तेजी से शुरुआत करना और मुख्य रूप से निर्गमन के माध्यम से, व्यवस्था विवरण के माध्यम से पेंटाट्यूचल कथा पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन कभी कभी कहानी को पूरा करने के लिए कुछ अन्य ग्रंथों को भी लाना। लेकिन निर्गमन इसराइल की कहानी से शुरू होता है और फिर से मैं बस इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि कहानी के प्रमुख विषय और सूत्र, जैसे कि वाचा, भगवान के लोग, ईडन में भगवान का मंदिर, ईडन की छवियाँ, भगवान का अपने लोगों के साथ रहना, फलदायी होना, बहुगुणित होना, उसके शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ईश्वर के उपशासक के रूप में कार्य करना और उसके शासन को पूरी सृष्टि में फैलाना, कैसे वे विषय उभरने लगते हैं और इसराइल से शुरू होने वाली आगामी कहानी में उठाए और पूरे किए जाते हैं। तो निर्गमन अध्याय 1-12 इस प्रकार शुरू होते हैं। मैं पद 11 का समर्थन करूंगा। तो इसराइल अब मिस्र में है, जहां उत्पत्ति कथा समाप्त होती है। निर्गमन मिस्र में इसराइल से शुरू होता है और यह कहता है श्लोक 11, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर इसराइलियों पर काम कराने वालों को नियुक्त किया, ताकि वे उन पर जबरन श्रम करके अत्याचार करें। उन्होंने फिरौन के लिए आपूर्ति नगर पिथोन और रामसेस का निर्माण किया, परंतु जितना अधिक वे इसराइलियों पर अंधेर करते थे उतना ही अधिक वे बढ़ते और फैलते जाते थे, यहां तक कि मिस्री इसराइलियों से डरने लगे। ध्यान दें कि श्लोक 12 में यह खंड इसराइल के बहुगुणित होने और फैलने का यह संदर्भ उत्पत्ति 1 और 2 में आदम और हव्वा के लिए भगवान के इरादे को दर्शाता है कि वे फलेंगे फूलेंगे और बढ़ेंगे और पृथ्वी को पूरा करेंगे। अब इसराइल ईश्वर के नए चुने हुए लोगों के रूप में, ऐसे साधन के रूप में जिसके द्वारा ईश्वर सृजन के अपने इरादे को पुनर्स्थापित करेगा जो आदम और हव्वा के साथ पूरा नहीं हुआ था, अब इसराइल ईश्वर के लोगों के रूप में फलदायी और बहुगुणित होने की भूमिका निभा रहा है। इसलिए वे ईश्वर के रूप में बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। उत्पत्ति 1 और 2 में ईश्वर का इरादा था, और जैसा कि उत्पत्ति 12 में अब्राहम के लिए ईश्वर का इरादा था, और अब्राहम कहानी के बाद के खंड जहां अब्राहम के पूर्वज अधिक संख्या में होंगे, उसकी संतानें होंगी आकाश के तारों से भी अधिक असंख्य। लेकिन मिस्र में उनकी स्थिति उनके लिए, उनके लोगों के लिए उत्पत्ति 1 और 2 में वापस जाने पर भगवान के इरादे के लिए खतरा बनती है, ताकि भगवान को उन्हें मिस्र से छुड़ाना पड़े, और भगवान द्वारा अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाना इस बात का मॉडल बन जाता है कि भगवान कैसे करेंगे बाद में अपने लोगों को उत्पत्ति 1 और 2 से उनके इरादे को पूरा करने के लिए बचाने के लिए कार्य करें। अब यह हमें निर्गमन 3 में लाता है। फिर से यह वह जगह है जहां मूसा आता है। मूसा ही वह होगा जो इसराइलियों को बाहर ले जाएगा मिस्र, उन्हें भूमि आशीर्वाद के स्थान पर लाने के लिए भगवान के इरादे को पूरा करने के लिए, ताकि वे सृजन से अपने इरादे को पूरा कर सकें। तो निर्गमन 3:6-8 में यहीं पर भगवान पहली बार मूसा को दिखाई देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि इसराइल को बचाने का ईश्वर का इरादा इब्राहिम से किए गए वादों से कैसे जुड़ा है, जो कि भूमि से जुड़ा हुआ है, और फिर जो एक अर्थ में बहुस्तरीय है कि यह सभी तरह से चलता है उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि की ओर वापस। निर्गमन 3 के अनुसार परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम से किए गए अपने वादे को निभाने के लिए मूसा और इसराइल के साथ स्पष्ट रूप से अपने इरादे की घोषणा की, जो फिर से वह साधन था जिसके द्वारा ईश्वर अपने लोगों को उनके मूल इरादे में बहाल करेगा। यही वह साधन है जो ईश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि के लिए और उसके लिए अपने इरादे को बहाल करेगा। उत्पत्ति 1 और 2 से उसके लोग। इसलिए फिर से इसराइल को मिस्र से बचाया जाना है, और जिस कारण से उन्हें फिर से मिस्र से बचाया गया है वह ईश्वर के साथ उस वाचा को निभाने से जुड़ा है जो उसने इब्राहिम के साथ बनाई थी, ताकि ईश्वर उन्हें बाहर ले आए। मिस्र ने उन्हें उस भूमि पर बसाने के लिए जिसे फिर से भगवान ने इब्राहिम से वादा किया था, लेकिन इब्राहिम को भूमि में लाने का इब्राहिम से किया गया वादा ही परमेश्वर के इरादे को पूरा करने के लिए था कि वह भूमि को आशीर्वाद के स्थान के रूप में दे। उत्पत्ति 1 और 2 में अपने लोगों को अनुग्रहपूर्ण उपहार दिया। इसलिए उदाहरण के लिए पूरे पेंटाटिच में ध्यान दें कि कैसे भूमि विशेष रूप से वादों में, यहाँ तक कि इब्राहिम से किए गए वादे, लेकिन मूसा से किए गए वादे, कैसे भूमि को बहने वाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है, उदाहरण के लिए दूध और शहद की धारा। तो निर्गमन 3:8 में कहा गया है, वास्तव में मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ, और मैं उन्हें इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने और उन्हें उस देश से निकालकर अच्छे स्थान पर ले जाने के लिए आया हूँ। विस्तृत भूमि वह कनानियों के देश की ओर दूध और मधु की धारा बहने वाली भूमि है। तो फिर यह भूमि उत्पत्ति 1 और 2 से मूल रचना के साथ मौजूद फलदायिता से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। अब भगवान मूसा और इसराइल के माध्यम से और उन्हें मिस्र से बाहर लाकर अपने मूल को पुनर्स्थापित करने के लिए भूमि पर लाने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं। सृजन का इरादा। उदाहरण के लिए फिर से व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में पेंटाटेच की अंतिम पुस्तक व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और श्लोक 11 से शुरू करने के लिए, और फिर से मैं चाहता हूं कि आप ईडन के साथ सभी संबंधों पर ध्यान दें, फल की धारणा और पौधों के उगने और सृष्टि के फलने फूलने का यह विचार भूमि आशीर्वाद का स्थान है। यह सब वापस जाने और उत्पत्ति 1 और 2 और मूल रचना को आशीर्वाद के स्थान और लोगों को उसकी संपूर्ण फलशीलता के साथ भूमि के एक अनुग्रहपूर्ण उपहार के रूप में याद करने के लिए है। तो 28 श्लोक 11 से शुरू करते हुए यह इसराइलियों से परमेश्वर का वादा है, जब वे देश में जाने वाले हैं, यहोवा तुम्हें तुम्हारे गर्भ के फल में, तुम्हारे पशुओं के फल में और तुम्हारे पशुओं के फल में बहुत समृद्धि देगा। अपनी भूमि की उपज उस देश में जिसे तुम्हें देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहीम से खाई थी। प्रभु तुम्हारे लिए अपना समृद्ध भंडार स्वर्ग खोल देगा, ताकि समय पर तुम्हारी भूमि पर शासन कर सके और तुम्हारे सभी उपक्रमों को आशीर्वाद दे सके। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु उधार न लेगा। प्रभु तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी लगन से मानकर उनका पालन करोगे, तो तुम केवल शीर्ष पर रहोगे और नीचे नहीं। और यदि तू उन बातों में से जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ किसी से न मुड़े, तो पराए देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना करना। तो 2 बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, भूमि में आशीर्वाद के इसराइल से इस वादे का संबंध, अब्राहम से संबंध, कि यह परमेश्वर के इरादे का हिस्सा है कि उसने अब्राहम से जो वादा किया था उसे बहाल करना और पूरा करना है। लेकिन सृष्टि में उत्पत्ति 1 और 2 से भी संबंध, भूमि में फलदाई और आशीर्वाद की यह सारी भाषा अंततः उत्पत्ति 1 और 2 से उसकी रचना के लिए भगवान के मूल इरादे को प्रतिबिंबित करने के लिए है कि भूमि फलदाई और आशीर्वाद का स्थान है आदम और हव्वा के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, यदि वे आज्ञा माने। और अब यहाँ भी वही हालात हैं। यदि वे उनके साथ परमेश्वर के अनुबंधित संबंध और अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे और परमेश्वर द्वारा उन्हें दी गई हर बात का पालन करने में सावधानी बरतेंगे, तो वे आदम और हव्वा की तरह ही भूमि में आशीर्वाद का आनंद लेंगे। लेकिन यह हमें अगले विषय पर लाता है। एक और बात जिस पर मैं फिर से बात करना चाहता हूँ, वह है ईश्वर का वाचा संबंध, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वह वाचा जो ईश्वर इसराइल के साथ बनाता है, मोजेक वाचा। एक्सोडस थ्रू ड्यूटेरोनॉमी की किताबें आम तौर पर अपने लोगों के साथ भगवान की वाचा के लिए कानूनी और सांस्कृतिक आधार देती हैं। तो निर्गमन में व्यवस्था विवरण के माध्यम से भगवान ने इसराइल को अपने लोगों के रूप में चुना, और फिर बगीचे में आदम और हव्वा की तरह, जो परमेश्वर के साथ एक अनुबंधित रिश्ते में थे, बगीचे में रहने और इसके फल और आशीर्वाद का आनंद लेने की उनकी क्षमता आज्ञाकारिता पर आधारित थी। यदि वे आज्ञा मानने से इनकार करें, अर्थात भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से इनकार करें, जिसका फल खाने से परमेश्वर ने उन्हें मना किया है, यदि वे उसका उल्लंघन करते हैं, तो वे उस भूमि से, अर्थात परमेश्वर के आशीर्वाद के स्थान से, उस स्थान से हटा दिए जाएंगे। भगवान की उपस्थिति का। और वास्तव में बिल्कुल वैसा ही हुआ। यही बात उस वाचा संबंध के साथ भी सच है जो परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के साथ करता है। वह उन्हें अपने लोगों के साथ चुनता है। वह उन्हें उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में इब्राहीम से किए गए वादे को पूरा करने के लिए भूमि पर लाता है। और वाचा की शर्त का एक हिस्सा यह है कि वे भगवान के अनुग्रह प्रावधान के रूप में भूमि के निर्माण की उपज और आशीर्वाद का आनंद लेंगे, यदि वे भगवान की आज्ञाओं का पालन करें। तो फिर अध्याय 28। मुझे व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का कुछ हिस्सा पढ़ने दीजिए, बस पहले कुछ छंद। यदि तुम केवल अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं का ध्यानपूर्वक पालन करके उसका पालन करोगे और इसराइल को फिर से संबोधित करते हुए जो मैं आज तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से ऊपर ऊंचा करेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानोगे तो ये सब आशीषें तुम पर आएंगी और तुम्हें प्राप्त होंगी। तू नगर में धन्य होगा और तू मैदान में धन्य होगा। तेरे गर्भ का फल और भूमि की उपज और पशुओं की संतान और गाय बैल और भेड़ बकरी की संतान धन्य होगी। तेरी टोकरी और आटा गूंथने का कटोरा धन्य होगा। जब तुम भीतर आओगे तब धन्य होगे और जब बाहर जाओगे तब तुम धन्य होगे। यहोवा उन शत्रुओं को जो तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे तुम्हारे सामने परास्त कर देगा। वे एक ओर से तुझ पर आक्रमण करने को निकलेंगे और सात ओर से तेरे आगे आगे भागेंगे। यहोवा तुम्हारे खलिहानों में और तुम्हारे सब कामों में तुम्हें आशीष देगा। वह तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। तो स्पष्ट रूप से ईडन गार्डन में मूल रचना में एडम और ईव की तरह भूमि में उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त करना है वह उनकी आज्ञाकारिता पर वाचा के हिस्से के रूप में वातानुकूलित था। आज्ञा मानने से इनकार करने पर श्राप मिलेगा और देश से निर्वासन होगा। लिए फिर से व्यवस्था विवरण में वाचा के भाग के रूप में यह आशीर्वाद और श्राप का विषय व्यवस्था विवरण की पूरी किताब में चलता है। परंतु व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और पद 1 से 3 तक। अब यह आज्ञा विधि और नियम है जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुझे सिखाऊं कि जिस देश में तू जाने पर है और उस पर अधिकार कर ले तू और तेरे बच्चे और तेरे पोते पोतियां जीवन भर अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहें और जो वाचा परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी है उसके अनुसार मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूँ उसका पालन करते रहो जिससे तुम्हारे दिन बहुत दिन तक बने रहें। इसलिए हे इसराइल सुन और उनका ध्यान से पालन कर जिससे तेरा भला हो और तू देश में बहुत बढ़ जाए। गुणा करने और बढ़ाने की भाषा पर गौर करें ताकि तुम उस देश में बहुत बढ़ जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहा है। फिर से इसे पूर्वजों के साथ इब्राहिम के साथ जोड़ने का यह उद्देश्य लेकिन गुणा की भाषा जो कि सभी सृष्टि कथा पर वापस जाती है फिर से सुझाव देती है कि इसराइल भूमि में प्रवेश करने वाला है और भगवान का वादा है कि वे आशीर्वाद और गुणा का आनंद लेंगे। यह भूमि अपने लोगों के लिए परमेश्वर के मूल इरादे का हिस्सा है जो सृष्टि से चली आ रही है। उत्पत्ति अध्याय 28 पर फिर से वापस जाएं। अध्याय 28 का पहला भाग जिसे हमने अभी पढ़ा है वादा करता है कि यदि वे आज्ञा मानेंगे तो देश में आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के अध्याय 28 और श्लोक 62 से 64 पर ध्यान दें। फिर से इब्राहिम के साथ वाचा और यहाँ तक की सृष्टि तक के संबंधों पर ध्यान दें। श्लोक 62, यद्यपि तुम एक समय आकाश के तारों के समान बहुत थे तो भी तुम गिनती में थोड़े रह जाओगे क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा न मानी। और जैसे प्रभु ने आपको समृद्ध और असंख्य बनाने में प्रसन्नता व्यक्त की फिर से इब्राहिम के साथ वाचा को पूरा करने में और एब और ईव को फलने फूलने और बढ़ने के आदेश को पूरा करने में उसी प्रकार भगवान ने आपको समृद्ध और बहुसंख्यक बनाने में प्रसन्नता व्यक्त की वैसे ही प्रभु करेंगे तुम्हें विनाश और विनाश की ओर ले जाने में आनंद मनाओ। जिस देश के अधिकारनी होने के लिए तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़ दिए जाओगे। यहोवा तुमको पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब देशों के बीच तितर बितर करेगा और वहां तुम लकड़ी और पत्थर के पराये देवताओं की उपासना करोगे जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते होंगे। इसलिए यदि वे आज्ञा पालन करते हैं तो देश में आशीर्वाद देने का वादा भी साथ में श्राप और अवज्ञा करने पर श्राप और देश से निर्वासन का वादा भी है। तो फिर मोजेक वाचा इसराइल के लिए भगवान का वादा और मूसा और इसराइल राष्ट्र के साथ स्थापित वाचा के माध्यम से वह साधन है जिसके द्वारा इसराइल इब्राहिम के साथ की गई वाचा के लिए भगवान के इरादे को पूरा करेगा, लेकिन अंतः सृजन के लिए उसका इरादा वापस स्थापित हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2। और फिर ऐसे अन्य पाठ भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, व्यवस्था विवरण आशीर्वाद और शाप की भाषा से भरा है जो फिर से पीछे जाता है और आशीर्वाद और शाप के सृजन वृत्तांत को दर्शाता है। फिर यदि वे आज्ञा मानने से इनकार करते हैं तो भूमि से निर्वासन का वादा, भगवान की उपस्थिति से हटाना और आशीर्वाद और फलने फूलने के स्थान से हटाना, ये सभी इब्राहिम की वाचा को प्रतिबिंबित करते हैं जो उनकी सारी रचना के लिए भगवान के मूल इरादे पर भी वापस जाता है और अपने लोगों के लिए। अब अगला विषय जिसके बारे में मैं फिर से बात करना चाहता हूँ, हमने ईश्वर के लोगों के बारे में बात की है, हमने वाचा के बारे में बात की है, हमने भूमि के बारे में बात की है और वे कैसे उत्पत्ति और सृष्टि से जुड़ते हैं जिसे पूरा करने का ईश्वर का इरादा है सृजन के लिए और उत्पत्ति से अपने लोगों के लिए उनका मूल आदेश। अगला विषय तंबू और मंदिर है। फिर मैं इनका एक साथ इलाज करूंगा। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, मूल रूप से टैबरनेकल एक मंदिर का एक पोर्टेबल संस्करण है। मंदिर तंबू का अधिक स्थायी संस्करण था, इसलिए तंबू उपयुक्त था क्योंकि इसराइली जंगल में भटक रहे थे और भूमि की ओर जा रहे थे। एक बार जब वे वहां बस गए और स्थापित हो गए तो मंदिर के रूप में एक अधिक स्थायी संरचना का निर्माण किया गया। लेकिन आम तौर पर मुझे लगता है कि उन दोनों ने एक ही उद्देश्य पूरा किया और वह तंबू है जो जंगल में इसराइल के साथ था जब उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और वादा किए गए देश की ओर अपना रास्ता बनाया। तंबू फिर से अपने लोगों के साथ उसकी उपस्थिति में भगवान के निवास का प्रतीक था। और फिर अंततः जब वे एक मंदिर बनाते हैं, एक अधिक स्थायी निवास, भगवान के निवास का स्थान, फिर से मंदिर अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके मूल में मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते थे। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा, इसका महत्व यह है कि उत्पत्ति में ईडन गार्डन और एक अर्थ में सारी सृष्टि का अर्थ पवित्र स्थान था, वह स्थान जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते थे। एक अर्थ में ईडन गार्डन को भगवान के मंदिर या भगवान के तंबू के रूप में समझा जाना चाहिए जहां भगवान की उपस्थिति विश्राम करती थी और मंदिर के निर्माण के पूरा होने पर विश्राम करती थी। और वैसे कभी कभी निर्गमन 25 और उसके बाद में मंदिर के निर्माण का विवरण और उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि का विवरण पढ़े और दोनों के बीच समानता पर ध्यान दें। इसलिए उत्पत्ति 1 और 2 में फिर से भगवान एक निवास स्थान, एक मंदिर, एक अभयारण्य का निर्माण कर रहे हैं जहां उनकी उपस्थिति उनके लोगों के साथ विश्राम करेगी। अब गार्डन पवित्र स्थान था, इसलिए फिर से तंबू और मंदिर दोनों मैं इसे लेता हूं, एक अर्थ में ईडन गार्डन की प्रतिकृतियां थीं। और हमने पहले ही उत्पत्ति 1 और 2 में वर्णित ईडन गार्डन और मंदिर के बीच कुछ समानताएं देख ली हैं। उदाहरण के लिए हम मंदिर में देखते हैं कि तंबू और मंदिर दोनों वास्तव में सोना उनमें से एक है, प्रमुख धातुएं जिनसे तंबू और मंदिर बने हैं। जब आप ईडन गार्डन के वर्णन में उत्पत्ति 2 पर वापस जाते हैं तो यह दिलचस्प है कि सोना ईडन के क्षेत्र में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों में से एक है। हमने भगवान के आराम करने की अवधारणा, भगवान के निवास या मंदिर में आराम करते हुए उनकी उपस्थिति, प्रकाशमानों और रोशनी के विचार के बारे में भी बात की जो मंदिर में दीपस्टैंड को प्रतिबिंबित करते हैं और लैंप स्टैंड शायद जीवन के वृक्ष को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए हमने पहले से ही उत्पत्ति 1 और 2 में सृजन कथा में कई मंदिर रूपांकनों को देखा है जो बाद में मंदिर के विवरणों में उठाए गए हैं। लेकिन फिर मंदिर और तंबू का अर्थ ईडन गार्डन की प्रतिकृतियां या लघु रूप में ईडन गार्डन, ईडन और नुस्का गार्डन था। तो फिर एक अर्थ में मंदिर का मतलब था। मंदिर और तंबू का मतलब अंततः सारी सृष्टि कैसी होनी चाहिए इसकी एक तस्वीर बनना था। ईश्वर की उपस्थिति पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर की महिमा और उसका शासन और राजत्व सारी सृष्टि में व्याप्त है। फिर से यानी उत्पत्ति अध्याय 1 और 2। तो मंदिर और तंबू अंततः सारी सृष्टि की तरह दिखने वाले चित्र थे। जैसा कि हमने कहा, सोना प्रमुख में से एक है। आपको बस निर्गमन 25 और उसके बाद के टैबरनेकल के विवरण को पढ़ना है। 1 राजा 5 से 7 के माध्यम से पढ़े मंदिर के निर्माण का विवरण और सोने की प्रमुख भूमिका पर ध्यान दें। फिर सोना उन बहुमूल्य धातुओं में से एक है जो उत्पत्ति 2 में स्वर्ग और ईडन गार्डन के वर्णन में पाई गई है। लेकिन ध्यान दें, और हम पहले ही कह चुके हैं कि बहुत सारे यहूदी साहित्य, उदाहरण के लिए सर्वनाश साहित्य, एक अन्य साहित्य में एडम को एक पुजारी के रूप में दर्शाया गया है जो ईडन गार्डन में एक पुजारी के रूप में कार्य करता था। इसमें ईडन गार्डन को भगवान की उपस्थिति के स्थान के रूप में दर्शाया गया था जहां भगवान की महिमा की रोशनी पूरे बगीचे में चमकती थी। लेकिन कई अन्य दिलचस्प संकेत भी हैं। उदाहरण के लिए देखें, यह 1 राजा 6 है जो मंदिर के निर्माण के विवरण का हिस्सा है। 1 राजा 6:29-30। इसमें कहा गया है, उसने घर की दीवारों पर चारों ओर करूबों की नक्काशी की, ताड़ के पेड़ पकड़े और भीतरी और बाहरी कमरों में फूल खिलवाए। उसने घर का फर्श खोला, भीतरी और बाहरी कमरे सोने से मढ़े हुए थे। हम पहले ही सोने का उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन मंदिर को करूबों, देवदूत प्राणियों, ताड़ के पेड़ों और खुले फूलों की नक्काशी से क्यों उकेरा गया है? शायद इसलिए क्योंकि वे उत्पत्ति 1 और 2 में और अदन की वाटिका में सृष्टि की फलदायिता को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जिसमें पेड़ थे, जीवन का पेड़, पेड़ उग रहे थे, पौधे उग रहे थे जो फल देते थे। सबसे अधिक संभावना यह है कि मंदिर पर की गई नक्काशी उसी को प्रतिबिंबित करने के लिए है। और फिर करूबों की नक्काशी शायद उन 2 करूबों को दर्शाती है जो आदम और हव्वा को उनकी अवज्ञा के कारण निर्वासित किए जाने के बाद ईडन गार्डन, मंदिर के बगीचे, पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। इसलिए पौधों और ताड़ के पेड़ों की नक्काशी मूल रचना और मूल स्वर्ग की फलदायिता की याद दिलाती है। यह भी दिलचस्प है कि जब वाचा का संदूक बनाया जाता है तो अध्याय 6 में आपने इसके बारे में भी पढ़ा है, 2 करूब हैं जो इसकी रक्षा करते हैं, इस तरह की निगरानी करते हैं, उन्हें पवित्र स्थान में रखा गया है। फिर 2 करूब जो पवित्र स्थान की रक्षा करते हैं जहां भगवान की उपस्थिति विशेष रूप से प्रकट होती है, संभवतः 2 करूबों को प्रतिबिंबित करते हैं, देवदूत प्राणी जो ईडन गार्डन के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में भगवान की उपस्थिति का स्थान। दिलचस्प बात यह है कि दीवट, जैसा कि मैंने कहा, दीवट शायद ईडन गार्डन में जीवन के वृक्ष को दर्शाता है। उत्पत्ति में मुझे खेद है, ईजेकील अध्याय 47 में हम उस पाठ के बारे में बाद में बात करेंगे। अगले व्याख्यान में हम भविष्यवाणी की अपेक्षा के बारे में अधिक बात करेंगे और यह कैसे कहानी और कथानक में फिट बैठता है। लेकिन ईजेकील 47 में हमें इसका वर्णन मिलता है। दरअसल ईजेकील 40 से 48 एक पुनर्निर्मित मंदिर के बारे में ईजेकील का दृष्टिकोण है और यह कहानी की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अध्याय 47 में ईजेकील ने मंदिर का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में किया है जहां से एक नदी बहती है जो फिर से बहुत समान है, और वास्तव में नदी के दोनों ओर पेड़ हैं जो फल देते हैं। यह सब उत्पत्ति अध्याय 2 में ईडन गार्डन के वर्णन को याद दिलाता है जहां से एक नदी बहती है, जीवन का पेड़, फल आदि। तो इससे पता चलता है कि स्पष्ट रूप से मंदिर और तंबू को ईडन गार्डन की प्रतिकृतियां माना जाता था। फिर से एक तरह की तस्वीर, एक स्नैपशॉट, भगवान ने अपनी संपूर्ण रचना के लिए जो इरादा किया था उसका लघु रूप में एक चित्र। आशीर्वाद और फलदायी स्थान जहां भगवान अपने लोगों के बीच में निवास करेंगे और भगवान की महिमा और उनका शासन उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 की पूर्ति में संपूर्ण सृष्टि में फैल जाएगा। वह अब पूरा होना शुरू हो गया है और वह अब है तंबू और मंदिर दोनों की स्थापना में ईश्वर के आशीर्वाद के स्थान के रूप में क्रिस्टलीकृत या प्रदर्शित किया गया। फिर से जैसा कि मैं इसे टेम्पल गार्डन कहना पसंद करता हूँ, इसलिए टेम्पल गार्डन का विषय इसराइल के साथ ईश्वर के व्यवहार की चल रही कहानी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और फिर इसराइल सृष्टि के लिए अपने मूल इरादे को बहाल करने में ईश्वर का साधन है। इसराइल की कहानी में पाया जाने वाला एक और प्रमुख विषय राजत्व का है, और यह दो तरह से परिलक्षित होता है। नंबर 1, पहले से ही निर्गमन अध्याय 19 और पद 6 में। मुझे लगता है कि यही वह पाठ है जो मैं चाहता हूँ। निर्गमन अध्याय 19 और पद 6, इसराइल को पुजारियों का राज्य होना था, इसलिए पुजारी या मंदिर की कल्पना दोनों पर ध्यान दें, लेकिन राजत्व की कल्पना पर भी। फिर से इसराइल के लिए पुजारियों का राज्य बनने का इरादा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। फिर से मानवता के लिए सृष्टि पर शासन करने और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से इस मंदिर के बगीचे में भगवान की महिमा और उपस्थिति को फैलाने के लिए भगवान की मंशा। अब आदम और हव्वा विफल रहे, वह और निर्वासित कर दिए गए। अब याजकों के राज्य के रूप में इसराइल उस इरादे को पूरा करने का ईश्वर का साधन है। फिर भी अधिक विशिष्ट रूप से राजत्व या शासकत्व या आदम और हव्वा के ईश्वर के उपशासनकर्ता के रूप में कार्य करने का विषय अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और इसराइल के राजा में परिलक्षित होता है, और इससे भी अधिक विशेष रूप से डेविडिक वाचा में। इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप 2 सैमुएल के पास जाते हैं, 2 शमूएल अध्याय 7 में, जो दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा की स्थापना है और किए गए अधिकांश वादे डेविडिक राजा की पूर्ति की अधिकांश उम्मीदें और पूरे पुराने और नए नियम में मसीहा संबंधी वादे 2 शमूएल अध्याय 7 पर वापस जाते हैं। लेकिन 2 शमूएल अध्याय 7 में और विशेष रूप से पद 14 के आसपास के छंदों में, मुझे पद 10 पर वापस जाने दीजिए, वास्तव में मुझे पद 8 पर वापस जाने दीजिए, और यह डेविड के लिए भगवान का वादा है। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से यों कहना, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैंने तुझे भेड़ बकरियों के चराने से लेकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान होने के लिए चराइयों में से ले लिया है, और जहां जहां तू गया वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे सामने तेरे सब शत्रुओं को नाश किया है, और तेरा बड़ा नाम करूंगा। अब्राहमिक वाचा के साथ संबंध पर ध्यान दें। इसराइल को एक बड़ा नाम बनाना, इब्राहिम को एक बड़ा नाम बनाना, पृथ्वी के महान लोगों के नाम की तरह, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिथे एक स्यान ठहराऊंगा और उनको बसाऊंगा कि वे अबके स्यान में बसें और फिर कभी उपद्रव न करें, और कुकर्मी उन्हें पहले के समान फिर कभी दुख न देंगे। उस समय से मैंने अपनी प्रजा इसराइल पर न्यायी ठहराए और तुझे तेरे सब शत्रुओं से विश्राम दूंगा। इन सभी विषयों पर ध्यान दे जो इब्राहिम की वाचा के साथ साथ सृष्टि तक भी जाते हैं। उसे आराम देने, भूमि में आराम करने का विषय ईश्वर के विश्राम, भूमि में ईश्वर की उपस्थिति के विश्राम की याद दिलाता है। फिर इसराइल को भूमि पर रोपे जाने का विषय आशीष का विषय दाऊद के नाम को महान बनाए जाने का विषय। ये सभी दाऊद के वादे और परमेश्वर द्वारा दाऊद के साथ की गई इस वाचा को जोड़ते हैं, न केवल इब्राहिम से किए गए वादे तक बल्कि स्वयं सृष्टि तक भी। फिर से आप इस सतत कहानी को देखें। ये केवल चीजों को सही करने की कोशिश के लिए बनाई जा रही अलग अलग संधियां या अलग अलग योजनाएं नहीं हैं। वे सभी अंतत सृष्टि कथा से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे साधन के रूप में जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टि के लिए अपने इरादे को साकार करेगा, जो सबसे पहले उत्पत्ति 1 और 2 में आदम और हव्वा के साथ स्थापित किया गया था। आगे ध्यान दें, श्लोक 12, इब्राहिम और सृष्टि दोनों के साथ एक और संबंध। पद 12 में दाऊद से कहा गया है कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे पीछे तेरे वंश को उत्पन्न करूंगा, जो तेरे शरीर से उत्पन्न होगा, और मैं उसका राज्य स्थिर करूंगा। तो दाऊद से भी उसकी संतान का वादा किया गया है, जैसे इब्राहिम से एक संतान का वादा किया गया था, डेविड से भी एक संतान का वादा किया गया है कि उसकी संतान फिर से जीवित की जाएगी। इसलिए यह सब बताता है कि इब्राहिम से किया गया परमेश्वर का वादा अंततः दाऊद के राजा के माध्यम से पूरा हुआ, परमेश्वर द्वारा दाऊद को चुनने से। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 की रचना डेविडिक वाचा में या डेविडिक वाचा में भी पूरी होती है। यदि मैं आगे जा सकता हूँ, पद 13 और 14, फिर भी 2 शमूएल अध्याय 7, वह दाऊद की संतान के निमित्त मेरे नाम के लिथे एक भवन बनाएगा, और मैं उसके राज्य का सिंहासन सदा के लिथे स्थिर करूंगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उसका पिता बनूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर बनूंगा, तुम मेरे लोग बनोगे की वाचा भाषा पर ध्यान दें। मैं पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र बनोगे। तो यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि परमेश्वर दाऊद को एक शाश्वत सिंहासन देने का वादा कर रहा है कि दाऊद के वंश में से कोई न कोई हमेशा रहेगा, जो दाऊद की संतानों में से एक होगा, जो उसके सिंहासन पर बैठेगा और इब्राहिम के साथ की गई वाचा की पूर्ति में इसराइल पर शासन करेगा। और इसके साथ यह विचार जुड़ा हुआ है कि इसराइल देश में होगा, परमेश्वर उन्हें देश में पुनर्स्थापित करेगा, परमेश्वर शासन करेगा, राजा दाऊद उन पर शासन करेगा और उन्हें विश्राम देगा। अब इससे मुझे यह भी पता चलता है कि डेविडिक राजा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, डेविडिक राजा वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर मानवता की उत्पत्ति 1 और 2 से सारी सृष्टि पर शासन करने के अपने इरादे को पूरा करता है। फिर से उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को याद करें। आदम और हव्वा को सारी सृष्टि पर शासन करने के लिए भगवान की छवि में बनाया गया था। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वे ईश्वर के उपशासन करता हैं। अब जिस तरह से ईश्वर अंततः इसे पुनर्स्थापित करेगा, वह न केवल इसराइल राष्ट्र को चुनकर है, बल्कि अधिक विशेष रूप से इसराइल पर ईश्वर के उपशासनकर्ता के रूप में शासन करने के लिए एक राजा को चुनना है। यह वह तरीका है जिससे परमेश्वर का अपने उपशासनों उत्पत्ति 1 और 2 के माध्यम से सारी सृष्टि पर शासन करने का इरादा अब अंततः स्थापित होने जा रहा है। उदाहरण के लिए आप उत्पत्ति, मुझे क्षमा करें, भजन अध्याय 2 में कई भजन ऐसे हैं जिन्हें अक्सर शाही भजन कहा जाता है। वे दाऊद के राजा का उल्लेख करते हैं जो अपने लोगों पर शासन करता है। और भजन अध्याय 2 और श्लोक 8, ध्यान दें कि भजन अध्याय 2 में राजा के शासन का अंतिम दायरा, राष्ट्रों ने षड्यंत्र क्यों किया और लोगों ने व्यर्थ षड्यंत्र क्यों किया। प्रेवी के राजा एक मन हो गए और हाकिम यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से दूर फेंक दें। जो स्वर्ग में बैठा है वह हंसता है, यहोवा उनको ठट्ठों में उड़ाता है। तब वह क्रोध में आकर उनसे बातें करेगा और जलजलाहट में आकर उन्हें घबरा देगा और कहेगा, मैंने अपने राजा अर्थात दाऊद राजा व दाऊद के वंश को स्थिर कर दिया है, मैंने अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन पर स्थापित कर दिया है। मैं प्रभु की आज्ञा के विषय में बताऊंगा। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। वहां अनुबंध सूत्र है, मुझसे मांगो और मैं राष्ट्रों को तुम्हारा निज भाग और पृथ्वी के छोर तक को तुम्हारा अधिकार बना दूंगा। तो अंततः दाऊद के राजा को उस उपशासन की पूर्ति के लिए ईश्वर के उपशासनकर्ता के रूप में संपूर्ण सृष्टि पर शासन करना था, जो कि आदम और हव्वा में ईश्वर के छविवाहक के रूप में प्रकट होना था, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि पर शासन करना था। तो फिर से मैं यह मानता हूँ कि डेविडिक राजा ईश्वर का उपशासक है, जो अंततः सारी सृष्टि पर शासन करने के लिए ईश्वर के छविवाहक के रूप में आदम और हव्वा को दिए गए मूल आदेश की पूर्ति में सारी सृष्टि पर अपना शासन स्थापित करने के लिए शासन करता है। इसलिए भूमि पर रहने वाले लोग, जिनके बीच में मंदिर में भगवान निवास करते हैं और भगवान उन पर शासन कर रहे हैं और डेविडिक राजा लोगों की ओर से शासन कर रहे हैं, इन सभी को अंततः अंतिम पूर्ति और भगवान के इरादे को पूरा करने के रूप में देखा जाता है, न कि केवल स्थापना के लिए। इब्राहिम की वाचा लेकिन इससे भी आगे उसकी स्थापना, सृष्टि की स्थितियों को बहाल करने और इन मौजूदा स्थितियों के साथ इसराइल को सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनना है और इसराइल को राष्ट्रों के बीच भगवान की महिमा और प्रशंसा की घोषणा करनी है और संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर की संप्रभुता का विस्तार करना। फिर से उत्पत्ति एक और दो की पूर्ति में, हालांकि ये स्थितियां मौजूद हैं, हमें वापस जाना होगा और उन वाचा शर्तों को याद रखना होगा जो ईश्वर ने व्यवस्था विवरण में मोजेक वाचा के माध्यम से इसराइल के साथ की थी। ये स्थितियां तब तक मौजूद रहेंगी जब तक इसराइल अनुबंध की शर्तों का पालन करता है और उसी तरह रखता है जैसे आदम और हव्वा आशीर्वाद की भूमि में रहेंगे और सारी सृष्टि पर शासन करने और सारी सृष्टि में अपनी महिमा फैलाने के लिए ईश्वर के आदेश को पूरा करेंगे जैसे उन्होंने आज्ञा मानी। इसराइल के साथ भी यही सच है। जब तक वे आज्ञा मानते हैं, वे उस भूमि में बने रहेंगे जो परमेश्वर का आशीर्वाद है और सारी सृष्टि पर परमेश्वर के शासन और महिमा को फैलाने के आदेश को पूरा करने में दाऊद के राजा के शासन के तहत इसकी फलदायिता का अनुभव करेंगे। डेविडिक राजा भगवान का उपशासक है और भगवान मंदिर के बीच में रहते हैं। यह स्थिति तब तक मौजूद रहेगी जब तक इसराइल अनुबंध संबंध बनाए रखता है। हालांकि फिर से यदि इसराइल विफल हो जाता है तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा जैसे आदम और हव्वा को किया गया था। उन्हें भूमि आशीर्वाद के स्थान से निर्वासित कर दिया जाएगा और वे तब उसे पूरा करने से इनकार कर देंगे। वे तब उस जनादेश को पूरा करने में विफल हो जाएंगे जो अंतः सृजन पर वापस जाता है। और वास्तव में जैसा कि कहानी कहती है, इसराइल बिल्कुल यही करता है। इसराइल वाचा निभाने में विफल रहा। वे पाप करते हैं, वे अन्य मूर्तियों के पीछे जाते हैं और इसलिए यदि आप याद रखें, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की है, इसलिए यदि आप अपने पुराने नियम के इतिहास को याद करते हैं तो भगवान ने उन्हें निर्वासन में भेज दिया है, अर्थात उन्हें उस भूमि से जो परमेश्वर के आशीर्वाद का स्थान है, परमेश्वर की अपने लोगों के साथ उपस्थिति का स्थान है, निर्वासित कर दिया गया है और उन्हें एक विदेशी भूमि, उत्पीड़न की जगह और निर्वासन की जगह पर ले जाया गया है। उदाहरण के लिए पहले राजाओं पर ध्यान दें। दिलचस्प बात यह है कि एक राजा 5-7 में मंदिर के निर्माण के वर्णन के अंत में, बाद में उसके अंत में अध्याय 9 और छंद 6-7 में, वास्तव में अगर मैं थोड़ा सा समर्थन कर सकूं, साथ ही मैं अध्याय 9 श्लोक 1 से शुरू करूंगा और श्लोक 6 और 7 को पढ़ूंगा। एक राजा अध्याय 9, जब सुलेमान ने घर, यहोवा का मंदिर और राजा का भवन और सब कुछ बनाना पूरा कर लिया था जिसे सुलेमान ने बनाना चाहा, यहोवा ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिया जैसे उसने गिबोन में उसे दर्शन दिया था। यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना और बिनती जो तूने मेरे सामने की है सुन ली है। मैंने इस घर को जो तुमने बनाया है पवित्र कर दिया है। मैंने अपना नाम वहां हमेशा के लिए रख दिया है। मेरी आंखें और मेरा दिल हमेशा वहीं रहेंगे। यदि तुम अपने पिता दाऊद की नाई खराई और सीधाई से मेरे सामने चलोगे और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसके अनुसार काम करोगे और मूसा की व्यवस्था में से मेरी सब विधियों और नियमों को मानोगे, तो मैं इसराइल पर हमेशा के लिए तुम्हारा राज सिंहासन स्थापित करूंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता दाऊद से वादा किया था कि इसराइल के सिंहासन पर तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो यह उस वाचा का आशीर्वाद वाला भाग है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्थापित किया है। हालांकि आयत 6 और 7, परंतु यदि तुम अपने बच्चों समेत मेरे पीछे चलना छोड़ दो और मेरी आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है उनका पालन न करो और जाकर पराए देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो अब सुनो, तब मैं इसराइल को उस देश में से जो मैंने उनको दिया है नाश करूंगा, और जो भवन मैंने पवित्र किया है और यह मंदिर जो मैंने आपके नाम के लिथे पवित्र किया है उसे मैं आपके सामने से दूर करूंगा, और इसराइल सारी प्रजा के बीच में लोकोक्ति और उपहास का गीत बन जाएगा। यह घर खंडहरों का ढेर बन जाएगा। और वास्तव में इसराइल के साथ बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध को मानने और निभाने में विफल रहे। उन्हें फिर से भूमि से निर्वासित कर दिया गया, मंदिर को नष्ट कर दिया गया, भगवान की उपस्थिति को वहां से हटा दिया गया। इसराइल को आशीर्वाद की भूमि से, भगवान के निवास और उपस्थिति के स्थान से हटा दिया गया, और अब वे स्वयं को भूमि के बाहर निर्वासन में ईश्वर के आशीर्वाद और उपस्थिति से बाहर एक स्थान पर पाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आदम और हव्वा और इसराइल के बीच स्पष्ट समानताएं हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 और 3 में आदम और हव्वा की कहानी और अब इसराइल के साथ स्थिति, जिस पर हम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए हैं। सबसे पहले फिर से उत्पत्ति 1 और 2 में हम आदम और हव्वा को परमेश्वर के पहले लोग भूमि में पाते हैं, जो परमेश्वर के आशीर्वाद का स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर उनके साथ रहता है, एक ऐसा स्थान जहां वे फिर से रहते हैं ईश्वर के साथ अनुबंधित संबंध में। फिर भी क्योंकि वे ईश्वर और उनकी वाचा के अंत का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें भूमि, आशीर्वाद के स्थान, बगीचे, आशीर्वाद के स्थान और ईश्वर की उपस्थिति के स्थान से निर्वासित कर दिया जाता है। तो आदम और हव्वा विफल हो गए। अब इसराइल भगवान के लोगों के रूप में भी भूमि पर लाया जाता है, भगवान का आशीर्वाद का स्थान, वह स्थान जहां भगवान रहते हैं। अब लघु उद्यान, ईडन गार्डन, मंदिर में, फिर भी वे पाप करते हैं, वे असफल होते हैं वाचा के रिश्ते को निभाने के लिए, और उन्हें भी देश से निर्वासित किया जाता है। तो एक मायने में इसराइल की स्थिति आदम और हव्वा से बेहतर नहीं है। आदम और हव्वा सृष्टि के लिए परमेश्वर के मूल इरादे को पूरा करने में विफल रहे और उन्हें भूमि से निर्वासित कर दिया गया। इसराइल साथ आता है और उन्हें एक ही आदेश दिया जाता है, उन्हें फलदाई और गुणा करना है, उन्हें दाऊद के राजा के माध्यम से पूरी सृष्टि में भगवान के शासन और महिमा का प्रसार करना है। भगवान उनके साथ मंदिर के रूप में निवास करते हैं, भूमि पर वे आशीर्वाद और फल का अनुभव करते हैं, लेकिन वे भी सृजन के लिए परमेश्वर के इरादे को पूरा करने में विफल हो जाते हैं और वे भी निर्वासित हो जाते हैं। तो फिर सवाल इसराइल के इतिहास के अंत में सवाल बना हुआ है, फिर भगवान पूरी मानवता और पूरी सृष्टि के लिए अपने मूल इरादे को कैसे बहाल करेंगे जो उत्पत्ति 1 और 2 में शुरू हुआ था, लेकिन अब पाप के कारण बर्बाद और विफल हो गया है। फिर हमने देखा कि इसराइल ने आदम और हव्वा से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, वे भी परमेश्वर के इरादे को पूरा करने में विफल रहे और उन्होंने भी पाप किया, और उन्हें भी परमेश्वर के आशीर्वाद के स्थान से निर्वासित कर दिया गया। तो कहानी को फिर से दोहराने के लिए, आदम और हव्वा को भगवान के छवि वाहक के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व करने और उनकी महिमा और उनके शासन को फैलाने के लिए भगवान के उपशासनकर्ता के रूप में उनके शासन को पूरी सृष्टि में फैलाने के लिए बनाया गया था। और भगवान ने दयालुता से उन्हें वह भूमि दी थी उन्हें रहना है। भगवान उनके साथ रहेंगे, जब तक वे आज्ञा पालन करेंगे तब तक वे आशीर्वाद का आनंद लेंगे। आदम और हव्वा ने इनकार कर दिया और निर्वासित हो गए। ईश्वर ने इब्राहीम को चुना और सृष्टि के लिए अपने मूल आदेश को पूरा करने के लिए इज़राइल राष्ट्र को चुना। वह भी उन्हें भूमि देगा, वह उन्हें भूमि पर लाएगा, वह उनके साथ एक वाचा का संबंध स्थापित करेगा, उन्हें भी मंदिर के माध्यम से भूमि के आशीर्वाद का आनंद लेना होगा। भगवान उनके बीच में निवास करेंगे, अंततः दाऊद के राजा के माध्यम से वे सारी सृष्टि पर शासन करेंगे और भूमि के आशीर्वाद का आनंद लेंगे यदि वे परमेश्वर द्वारा उनके साथ बनाई गई वाचा का पालन करते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर भी आदम और हव्वा की तरह इज़राइल पाप करता है और उन्हें बगीचे से निर्वासित कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि भगवान मानवता के साथ अपने मूल इरादे को कैसे पूरा करेंगे, जिसे आदम और हव्वा साकार करने में विफल रहे, और वह इसराइल राष्ट्र के लिए भगवान की पसंद के साथ भी पूरा करने में विफल रहे। अब एक अर्थ में भगवान के पास दो मुद्दे या दो समस्याएं हैं, अगर हम इसे इस तरह से कहें। उसे आदम और हव्वा की अधिक वैश्विक समस्या से निपटना है, लेकिन इसराइल की अधिक विशिष्ट समस्या भी है, जो कि आदम और हव्वा और उनके पाप के माध्यम से पूरी सृष्टि और पूरी मानवता की समस्या है, लेकिन उसे अब भी निपटना होगा इसराइल राष्ट्र और उनकी दुर्दशा, क्योंकि याद रखें, भगवान ने इब्राहीम के साथ एक वाचा बनाई है कि इब्राहीम और इसराइल वे साधन हैं जिनके द्वारा भगवान बड़ी समस्या को ठीक करेंगे। इसे देखने का एक तरीका यह है कि आदम और हव्वा द्वारा बनाई गई बड़ी वैश्विक समस्या अब ईश्वर द्वारा इसराइल को चुनने की एक अधिक संकीर्ण स्थिति से तय होने जा रही है, लेकिन फिर उन्होंने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए ईश्वर के पास दो समस्याएं हैं ठीक करने की भावना। उसे इसराइल की पापपूर्णता की समस्या को ठीक करना होगा, क्योंकि यही वे साधन हैं जिनके द्वारा ईश्वर आदम और हव्वा और पूरी सृष्टि की बड़ी समस्या को ठीक करने जा रहा है। इसलिए उसे दोनों कठिनाइयों और दोनों स्थितियों को सुधारना होगा। वह सिर्फ इसराइल को खत्म नहीं कर सकता है और कह सकता है कि यह काम नहीं किया, मुझे कुछ और प्रयास करने दो या मुझे अपने मूल इरादे पर वापस जाने दो। ईश्वर इज़राइल वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर समस्त सृष्टि के लिए अपने इरादे को पुनर्स्थापित करेगा। फिर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को अंततः इज़राइल के माध्यम से आशीर्वाद दिया जाना है, इसलिए भगवान इज़राइल को भी आदम और हव्वा की तरह और पूरी सृष्टि और पूरी मानवता को जैसे उन्हें पाप और मृत्यु से बचाया जाना चाहिए वैसे ही इज़राइल को भी, और शायद सबसे पहले पाप और मृत्यु से बचाया जाना चाहिए ताकि समस्त मानवता और समस्त सृष्टि की व्यापक समस्या का समाधान हो सके। तो पुराने नियम के शेष भाग और फिर नए नियम में कहानी जारी रहेगी और इस प्रश्न का उत्तर देना जारी रहेगा। फिर से परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय एक और दो से सृष्टि के अपने मूल इरादे को कैसे पुनर्स्थापित करने जा रहा है, लेकिन इसका उत्तर केवल यह पूछकर ही दिया जा सकता है कि ईश्वर इसराइल और वहां की समस्या को कैसे पुनर्स्थापित करेगा, क्योंकि फिर से इज़राइल वह साधन था जिसके द्वारा ईश्वर सृजन के अपने मूल इरादे को हल करेगा और पुनर्स्थापित करेगा। इसके बाद अगले व्याख्यान की आशा करने के लिए यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं जैसे यशायाह और यहेजकेल, यिर्मयाह और जकरयाह और अन्य भविष्यवाणी ग्रंथों में पाई गई अपेक्षा के लिए मंच तैयार करता है। यह भविष्यवक्ताओं में पाई जाने वाली अपेक्षा को निर्धारित करता है कि ईश्वर यह कैसे करेगा और फिर परमेश्वर इसराइल को पाप और मृत्यु से कैसे बचाएगा, ताकि अंततः पूरी मानवता को उनकी दुर्दशा से भी बचाया जा सके, ताकि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में सृष्टि के लिए परमेश्वर के इरादे को पुनर्स्थापित किया जा सके। तो हम तब क्या करने जा रहे हैं, जब हम भविष्यवाणी पाठ को देखना शुरू करते हैं, जो अपने लोगों को निर्वासन से बहाल करने और इज़राइल की बेवफाई द्वारा बनाई गई स्थिति को सुधारने के लिए, अंततः बहाल करने के लिए भगवान के इरादे के बारे में पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। उत्पत्ति 1 और 2 में संपूर्ण सृष्टि के लिए ईश्वर की मंशा, जैसा कि हम भविष्य सूचक पाठ को देखते हैं, जो यह अनुमान लगाता है। फिर से हम उन प्रमुख विषयों से अवगत होना चाहते हैं जिन्हें हमने उत्पत्ति अध्याय 1 और 3 में देखा है। सेटिंग, और फिर जिसे हमने इज़राइल के इतिहास में उभरते देखा है, ईश्वर के लोगों का विषय कि ईश्वर लोगों का निर्माण करता है। वाचा का विषय यह है कि ईश्वर उनके साथ वाचा के रिश्ते में प्रवेश करता है। वाचा वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा ईश्वर अपने लोगों से संबंधित होता है, जिसके द्वारा ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। भूमि और सृष्टि का विषय यह है कि भूमि और सृष्टि को एक दयालु उपहार के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर अपने लोगों को देता है। यह आशीर्वाद का स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर का विषय भूमि वह स्थान भी है जहां भगवान निवास करते हैं। मंदिर और उद्यान का विषय भगवान की उपस्थिति की बहाली की उम्मीद, मंदिर के जीर्णोद्धार की उम्मीद। वह परमेश्वर एक दिन फिर से अपने लोगों के साथ देश में निवास करेगा। राजत्व और उपशासन का विषय ईश्वर मानवता के लिए सृष्टि पर शासन करने के अपने इरादे को कैसे बहाल करेगा। अब इज़राइल के माध्यम से यह विशेष रूप से डेविडिक राजा पर केंद्रित होगा। परमेश्वर दाऊद के माध्यम से एक वादा करता है कि सृष्टि पर शासन करने का उसका इरादा अंततः दाऊद के राजा के माध्यम से पूरा होगा, जो लोगों की ओर से शासन करेगा। तो राजत्व का विषय, ये सभी विषय मेरी राय में भविष्य सूचक पाठ में उभर कर सामने आते हैं, और इसलिए अगले व्याख्यान के दौरान हम विशेष रूप से कुछ भविष्यवाणी पाठ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर से एक बहुत ही त्वरित अवलोकन दे रहा हूँ, लेकिन हम रुकेंगे और कुछ प्रमुख अंशों को देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये विषय इस एकल कहानी के हिस्से के रूप में, जो उत्पत्ति 1 और 2 और 3 तक वापस जाते हैं, हम देखेंगे कि कैसे ये विषय भविष्यवाणी साहित्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, और फिर अंततः बस उससे थोड़ा आगे इंगित करने के लिए हम देखेंगे कि भविष्य सूचक पाठ में व्यक्त की गई अपेक्षाएं अंततः नए नियम में यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कैसे पूरी होंगी, जहां ये सभी विषय होंगे नए नियम में उभरना शुरू करें। सबसे पहले यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा होना और अंततः इस नए लोगों में पूरा होना जिसे भगवान अब बनाएंगे। फिर से जैसे ही हम कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं, जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 3 से शुरू होती है। यह बाइबल की कहानी पेंटाटेचल कथाओं पर डेव मैथ्यूसन द्वारा व्याख्यान संख्या 2 था।